राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 सितंबर 1992 रात लगभग 8:30 बजे सुजानगढ़ में हुआ। राम
पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
मुक्ति के साधन जितने हैं उन सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है परमात्मा की भक्ति। वो श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है। ज्ञान मार्ग में शरीर में जो मैपन है इसको मिटाना पड़ता है। ये मिटना कठिन होता है, इस वास्ते उसमें क्लेशों अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त तेषाम अव्यक्त में जिनकी आसक्ति है उनके लिए ये ज्ञानकार मार्ग अधिक क्लेश देने वाला है। क्योंकि अभ्यक्षाय गते दुखम देहवत विवाद्य से देहधारी पुरुष है जिनमें देह का मैं और मेरापन है उन पुरुषों के द्वारा अभ्यक्त गति प्राप्त करना कठिन है। वो अभ्यक्त मार्ग है और भक्ति का अभ्यक्त मार्ग है मनुष्य सामने दिखती है तो ये सुगम है। अर्जुन ने बार में ध्यान पूछा तो भगवान ने समय युक्त तमो मत योगियों में सबसे श्रेष्ठ कहा भक्त को। छठा अध्याय में भी अगारी वर्ण करते करते जिसमें ध्यान का वर्णन है तो अंत में योग से चरित मना हो जाए तो उसी क्या गति होती है। मानो ध्यान करते हैं ध्यान में ठीक मन लगा है और परमात्मा का चिंतन होता है मरता है तो उसमें तो सदगति हो जाती है कि अंतकाल इसमें स्मरण होता करे पर अंत में ध्यान चरित मानस योग में मन चरित हो गया ध्यान में मन नहीं रहा तो अप्राप्त योग संसिद्धि योग की संसिद्धि को तो प्राप्त होता नहीं। काम गति कृष्ण गति कृष्ण हे भगवत वो किस गति को जाता है कश्चिन उभय भ्रष्ट क्या वह उभय भ्रष्ट हो रहे से मानो संसार का तो त्याग कर दिया और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई नहीं तो बीच में क्या नष्ट हो जाता है क्या उभय भ्रष्ट हो गए। तो छिन्नाभ्रम निश्चिति जैसे बद्दल का टुकड़ा बद्दल को छोड़कर दूसरे बद्दल में पहुंचे तब तो ठीक रहो बीच में छिन्न भिन्न हो जाए ऐसे ही उस साधक की क्या दशा होती है। ये मेरा संशय है अर्जुन ऐसा कह ये सर्वे संशय कृष्ण ये मेरा संदेह है। आप इस संदेह का नाश कर सकते हैं। तदन्य संशय से अस्य अस्य संशय से इस संशय का छेदन आपके सिवाय दूसरा नहीं कर सकता। कारण कि मरने के बाद क्या गति होती है इसको आप ही जानते हैं, दूसरा कोई पुरुष जानता नहीं। भूतानां गतिं आगतिं गतिं गिवेति विद्या विद्यान्ते सर्वाच्यो भगवान इति भगवान जानते। तो महाराज आप जानते उनकी क्या गति होती है। तो अर्जुन के इस प्रश्न में दुख की पश्चाताप की संदेह की बात खास क्या है कि वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है। ये एक व्याकुलता है, उधर क्या दिशा होती। तो भगवान पार्थ नहीं वे नामूत्र बिना शस्त्र से विद्यते प्रसादनंदन उसका नाश नहीं होता। तो यहाँ पार्थ संबोधन या पार्थ प्रसादनंदन कुंती का नाम प्रसाद था। कुंती भोज के गोद जाने से उसका नाम कुंती हुआ, पहले इसका नाम था प्रसाद। तो पार्थ कह करके अपनापन जनाते हैं, अपनी भुआ का बेटा है ना, वसुदेव जी की बहन है प्रसाद। तो प्रसाद नंदन नहीं वे है नाम उत्तर विनाश से विद्यते, ना यहाँ नाश होता है ना वहां नाश होता है, उसे नाश नहीं होता। छिंद्रा निश्चित ही ये प्रश्न था, छिन्नाभरी की तरह नष्ट हो जाते हैं ना, यहाँ भी वहां भी उसे नाश नहीं होता। तो महाराज विनाश न विद्यते भगवान कहते हैं भैया ये तो आरूढ़ होना चाहता था और योग से चरित मना हो गया, परंतु जिज्ञासु योग से केवल जिज्ञासा हो मन में कि मैं योग में चलू, वो भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रम कर जाता है। वेदों में जितने यज्ञ याग तप दान तीर्थ प्रसादिक जितने कहे हैं उन सब से ऊंचा उठ जाता है केवल योग की जिज्ञासा होने पर। ये तो योग से चरित मना हुआ है, तो योग के ऊपर आरूढ़ होना चाहता था, अंत समय में चूक गया भूल गया। तो नहीं कल्याण किस कष्ट दुर्गति, कल्याणकारी कोई काम करता है आदमी अपना कल्याण करना है, हमें तो अपना उद्धार करना है, अपनी मुक्ति करना है संसार के चक्र से, जन्म मरण से, दुखों से, संताप से, जलन से, हमें तो ऊंचा उठना है, इसमें जल में नहीं रहना है। ऐसा जिस भाई बहन का भाव हो जाए वो कल्याण किस है, उस किसी की दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याण कृतग्रस्त दुर्गति तात गच्छति, ये तात संबोधन दिया है। प्यारे अत्यंत प्यारे को तात कहते हैं। तो तात संबोधन गीता भर में एक बार ही आता है यही, और तात संबोधन नहीं आया है, 700 श्लोकों में तात संबोधन एक बार ही, क्योंकि अर्जुन घबरा रहे थे ना। ये घबराहट की बात थी कि महाराज किस किसी अरे क्या होता है उसका, संसार का त्याग कर दिया, परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं तो क्या दशा होती है। तो क्या दुर्गति नहीं होती, उसका पसंद हो जाए ना, पसंद नहीं होगा तो क्या होता है। तो उस भगवान ने दो पक्ष बताए, इसके उत्तर में दो पक्ष बताए हैं कि साधन करने वाले दो तरह के पुरुष होते हैं। एक तो पुरुष होते हैं जिनको वैराग्य हो गया, संसार में राग नहीं रहा, आसक्ति नहीं रही, कामना नहीं रही, संसार से ऊंचे उठ गए, भगवान के भजन में लग गए, ध्यान में लग गए, परमात्मा का चिंतन करने में लग गए। एक तो ऐसे आदमी होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनको वैराग्य तो हुआ नहीं, संसार का त्याग हुआ नहीं, पर सत्संग के द्वारा सुना कि मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, ऐसा विचार करके और संसार को छोड़कर भजन ध्यान में लगा। उसका भीतर में संसार छूटा नहीं है, परंतु पारमार्थिक उन्नति अपने तो करनी है, ऐसा विचार हो गया। एक साधक ऐसा होता है, वैराग्यवान होता है, उसकी बात पीछे कही और योग से चरित मना की पैर दूसरी बात कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि जब भोगों की वासना का त्याग किया उसने, भोग भोगना नहीं है, हमारे संसार में फंसना नहीं है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो वह यहाँ से मर करके स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है, वहां वो भोग भोगता है, सुख भोगता है, क्योंकि यहाँ के मलिन भोगों का त्याग किया भगवान को उद्देश्य लेकर के, तो फिर उनको स्वर्ग के दिव्य भोग भोगते हैं, और वहां काफी समय तक वो रहता है, फिर शुद्ध श्रीमानव के घर में जन्म लेता है, लक्ष्मी मानव घर में, क्यों भोग की वासना रही ना भीतर, जैसे ध्रुव जी महाराज के मन में राज्य की वासना रही तो भगवान ने कहा तुम राज्य करो, 36,000 वर्ष राज्य के बीच में भेजा। विभीषण के भी बात रही थोड़ी मन में, रावण ने कह दिया कि जा तुम, और बड़ा टेढ़ा बोला रावण कि मम पूर्वसी और तपसिन सम प्रीति, रहता तो है मेरे नगर में और प्रीति करता है तपसी के साथ, जा उन्हें कहो नीति, उसको नीति कह तेरी नीति मैंने मानी तो मेरा गांव जल गया, दूध का मारना नहीं चाहिए, तेरी बात मानी, लेकिन क्या दशा हुई मेरी, ऐसी नीति उनको जा बता जो उनकी यही दशा होगी, तेरे नीति वहां जाओ। तो विभीषण के मन में आया कि मैं तेरा भाई हूँ, अब तू यहाँ का राजा है तो मेरे रहने के लायक भी मेरी जगह नहीं है, मम पूर्वसी, कम से कम इतनी जगह तो मेरे को ही मिलनी चाहिए जितने घर में रह सकूं, मम पूर्वसी मेरे नगर में रहता है तो मेरी इतनी जगह भी नहीं है, अब मेरी जगह हो तो आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा, ऐसे आकाश मार्ग से गया, किसी पर नहीं गया। तो भगवान ने वहां जाते ही लंकेश कहा, आओ लंकेश, और लाओ गए समुद्र का जल। तो उसने कहा कि महाराज पहले मेरे वासना रही, राज्य की वासना मेरे रह गई थी मन में, परंतु आपके दर्शन से वो बह गई। भगवान कहते यदि भी तेरी इच्छा नहीं है परंतु मेरी इच्छा, तो इसकी छोटी इच्छा थी ना, तो भगवान लंकेश का लंका का राज दे दिया। अभी तक रावण से कोई लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, इस बार बैठे हैं रावण उस बार है, दे दिया अभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया, राज तिलक कर दिया। तो ये भोग वासना रहती है ना, तो भगवान उसको देते हैं, तेरे मन में रहेगी तो दे दे भाई। तो पहले वो ऊंचे स्वर्गाधिक में जाता है और वहां से यहां जन्म लेता है, तो श्रीमानों के घर में लक्ष्मीवान हो जिनके संपत्ति वैभव भोग होते हैं उसके घर में रहता है, तो उस घर में तो पुण्यवान का भी जन्म हो जाता है। अब आपके भजन में लगा और वहां से चरित मना हुआ तो इसका उपाय, उसका इसका उपाय बदला ये है, इसका फल ये है कि शुचि नाम श्रीमतांग के शुद्ध श्रीमानों के घर में, जिसके झूठ कपट बेईमानी ठगी आदि होती है और बड़े लक्ष्मीवान होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे धनवानों को तो यक्ष बताया है, यक्षवित को पता क्या था, वो यक्षवित है, जैसे यक्ष का धन होते वित्त से यक्ष रक्ष, तो ऐसा धनी बताया है। सुचिनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्ट हो जाए थे, वो योग भ्रष्ट होता है, शुद्ध श्रीमान ग्रह में जन्म लेता है। अथवा योगी नाम कुले बोधी धीमता, अब अथवा करके बताया कि जिसको वैरागी हो गया है और वो लगा है और किसी कारण से अंत में मन न रहे, योग से सच मना हो जाए, तो योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, उसको स्वर्ग अधिक जानना नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्ग अधिक तो भेजते काम नहीं, भोगों की वासना रहने से उसके वैराग्य त्याग है, तो उसको किसी कैद थोड़ा ही करना है, ऐसे को स्वर्ग में भेजना, सीमा में गर्म भेजना, तो उसको दुख देना है, कैद खाना है, वो चाहता नहीं भोगों। तो योगी नाम एक कुल है बहुत ही, वो योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। दुर्लभ चरम लोके जन्म यदि ईर्ष्यम, यदि ईर्ष्यम जन्म, ऐसा जो जन्म है योगियों के ही कुल में जन्म हो जाए, ये दुर्लभ चरम, बहुत दुर्लभ है ये, तो वो वहां नहीं जाकर के यही जन्म लेता है, तो क्योंकि वहां पर भोग वासना कोई विघ्न है ही नहीं, उस योग के लिए संग रहता है, ये पिता ही जब योगी है तो वहां की सामग्री सब ठीक रहती है, तो बाधक सामग्री भी नहीं है और साधक सामग्री मिल जाती है पारमार्थिक उन्नति के लिए, तो वो सीधा ही उन्हें घर में जन्म लेता है। ऐसा कहकर भगवान ने योग की महिमा कही। जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्मा की वर्षा से नहीं कल्याण कृषि योग की बड़ी महिमा, तो वो कहकर कहा भैया तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योगी मत हो दीर्घ कर्मी भ्रष्टाधिको योगी तस्मात योगी भवान। योगी सबसे श्रेष्ठ है, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ, और ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ योगी है, और कर्मी से भी श्रेष्ठ योगी है, इस वास्ते तू योगी हो जा। अब योगी का क्या मतलब है भाई, और ये तपस्वी और ज्ञानी ये क्या होते हैं, और कर्मी योगी तपस्वी, तो योगी हो जाए, योगी नाम किसका है, गीता में योग के कई अर्थ है, योग शब्द का प्रयोग बहुत हुआ गीता में, 18 अध्याय है, उसमें अंत में दो बार योग तो पुष्पिका आ जाता है, श्रीमद भगवद गीता व्यायाम योग शास्त्र अर्जुन प्रसाद योग हो नाम, तो दो योग तो 36 बार तो सुने आ गया, ऐसे बहुत बार योग आता है, योग के अर्थ कई भी होते हैं, अपने उसके योग के 3 अर्थ किए हैं मूल में, फिर उसके आवंतर के योग के अर्थ बताए हैं, एक गीता दर्पण में इसको खोल कर लिखा भी योग के क्या क्या अर्थ होता है, कहाँ पर कौन सा लेना चाहिए, कैसा कौन लेना चाहिए, इसका विवेचन योग गीता दर्पण में किया। तो योगी वास्तव में भगवान योगी किसको कहते हैं, तो भगवान के परिभाषा में समत्वम योग उच्चते, गीता में योग की 2 परिभाषा करी है, खास तो समत्वम योग उच्चते, समता इसमें न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न दुख है न सुख है, ये द्वंद्व से रहित होता है वो योगी होता है, समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है, नाम योग चित्तवृत्ति निरोध है, योग है चित्त वृत्ति के निरोध का, मानो अंतःकरण की वृत्तियां एकाग्र हो जाए, मन बस में हो जाए, इसका नाम योग है, मन में मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध 5 भूमिका होती है मन की, जिसमें एकाग्र और निरुद्ध में चित्त के वृत्तियों का नाम रोग निरोध करने का नाम है योग, ये गीता का योग है, वह गीता के योग पतंजलि योग का आगे फल बताया है कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तथा दृष्टि स्वरूप स्थान तब उस दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। गीता पहले ही आरंभ में कहते हमारा योग वो जो समता है समत्व योग उच्चते, एक तो परिभाषा ये की है भगवान ने खास, और दूसरी योग की परिभाषा भगवान ने की है तस्मा योग दुख संयोग अभियोग योग संगीतम छठाचार्य, दुखों के संयोग का ही वियोग है उसका नाम योग है। इन दो परिभाषाओं का क्या तात्पर्य है वो वास्तव में भगवान जाने, मैंने जैसा समझा है वो कहता हूं। मानो संसार के संबंध से रहित होने का नाम भी योग है और परमात्मा में स्थित होने का नाम भी योग है। परमात्मा में स्थित हो जाओगे तो समत्व योग यही चरित्र को ये शाम साम्य स्थित मना, यहाँ इस संसार में ही जीते जी संसार को जीत गया। किस कौन जीत गया? ये शाम साम्य स्थित, जिसका मन जिनका मन साम्यावस्था में स्थित होगा वो संसार को जीत गए। ये जो खटपट आती है ना संसार की दुविधा, इनसे ऊंचा उठ जाता है मन में वो नहीं रहती, उसका नाम समत्वम योग होते थे। मन में हर शोक नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। तो दुख संयोग वियोगम, संसार के दुख से रहित हो गया तो यही उचित स्तर को ये साम्य स्थित हमारा, तो संसार को जीत जाए इसका नाम योग है और परमात्मा में स्थित हो जाए इसका नाम है दुख संयोग। ये दुख आ रहे मसाशोधम, मैं पहले भी कहा था ये संसार इसको भगवान ने दुखालय बताया, दुखालय जैसे भोजनालय पुस्तकालय वस्त्रालय आई होता है, ऐसे ये संसार इसको भगवान ने दुखालय बताया। लोग ढूंढते हैं सुख इसमें, अरे दुखालय है भैया, बोल तो देख लो क्या लिखा है इसमें, क्या है यहाँ दुखालय बताया। माओ पे थे पुनर्जन्म दुखालय मसा ना अपने मंत्री महात्मा न संसदीम परमांग था, ये दुखालय है। तो दुखालय में सुख ढूंढे तो इससे ऊंचा उड़ जाता है उसका नाम योग है, और परमात्म तत्व में स्थित हो जाए उसका नाम योग है। तो जितना जितना संसार का योग संसार का संबंध विच्छेद होता है, जिसे में राग द्वेष हटते हैं, काम क्रोध जितने जितने हटते हैं, जितनी समता आती है वो योग होता है, और असली योग समता में स्थित हो जाना योग है। तो ये दो बताया, दुखों के संयोग का भी योग नाम योग और समता का नाम योग। अब योग में तो वो योग किस है, वो भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, मंत्र योग है, अनासंस योग है, योग कई है। पर जो योग में जैसे एक हो जाते हैं जैसे भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग ही है, तो भक्ति कर्म अलग अलग है, ज्ञान और कर्म अलग अलग है, तो कर्म और भक्ति अलग अलग है, परंतु योग सब में हो जाता है, योग में एक हो जाते हैं। मानो ये संसार का संबंध जिनमें छूट जाए, भक्ति से छूट जाए, चाहे कर्म योग से छूट जाए, चाहे ज्ञान योग से छूट जाए, संसार का संबंध छूट जाए तो योग हो जाएगा और समता आ जाएगी, राग द्वेष हर को मिट के समता में स्थिति हो जाएगी तो योग हो जाएगा। ये कर्म योग से भी होता है, भक्ति योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है, अष्टांग योग से भी होता है, लय योग से भी होता है, मंत्र योग से भी होता है, ये कई उपाय है। योग तो समता तक पहुंचने के लिए अलग अलग है, योग में सब एक हो जाते हैं, इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति में एक हो ही जाते हैं। तो ये योग है खास, तो एक दुख संयोग वियोगम योग उच्चते, एक है समत्व योग उच्चते, तो ये योग है। अब योगा चरित मना सबसे, योग किसका नाम है तो वह माया कि तपस्वी भ्योधिको योगी और ज्ञानी भ्योग मतोधिका और कर्मी भ्यस्ताधिको योगी, तीनों से योगी श्रेष्ठ है। तो योगी कौन? योगो अस्यासी, जिसके योग हो योग वाला उसका नाम है योगी। तो योगी श्रेष्ठ है तो इसमें भाव सिद्ध सिद्ध योग समूभूत समत्वम योग जैसे। तो योगस्था कुरु कर्मा, योग में स्थित हो कर्म करू। तो योग में स्थित हो रहा क्या त्याग करके और योग में स्थित होकर, योग नाम समता का है। तो ऐसी समता है उसमें कामना नहीं है, कामना रहित होने का नाम योग हुआ। तो तपस्या करता है, तपस्या कितना ही बड़ा है परंतु मन में राज की, भोग की, जीने की, सिद्धियों की कोई इच्छा भी सर मन में है, तपस्या करता है तो उसमें योगी श्रेष्ठ। जिसके मन में इच्छा नहीं है तपस्वी से वो श्रेष्ठ। ऐसे ज्ञानी है वो संसार का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, कई लोगों का ज्ञान है, बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान है, अहिमा महिमा आदि सिद्धियों का भी ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। उन ज्ञानियों से भी योगी शेष है पर जिसके निष्काम भाव है। तपस्वी है उसमें निष्काम भाव नहीं है, ज्ञानी है उसमें निष्काम भाव नहीं है, और कर्मी है निष्काम भाव नहीं है। ऐसे कर्म है निष्काम भाव उसको योगी शेष है कि निष्काम भाव नहीं है। कहां से लाए यह कहां से तपस्वी भेद हो गया, ज्ञानी जो भी कर्मी विस्तारी हो योगी। कहते हैं योगी है तो उससे श्रेष्ठ है, अगर वही निष्काम भाव से तपस्वी होगा तो वो योग हो गया ना। वो कैसे होगा, एक तपस्या है एक निष्काम भाव है, एक कर्म है निष्काम भाव है, एक में ज्ञान है निष्काम भाव है। तो निष्काम भाव या निष्काम भाव दूसरी में विशेषता आ जाएगी। इस वास्ते निष्काम भाव नहीं है, काम भाव वाले को भगवान ने श्रेष्ठ बताया। और भी बारहवें अध्याय में कह रहा है उसमें भी स्वयं ज्ञानम अभ्यास ज्ञाना ध्यानम विशेष थे ध्याना कर्म फल त्याग त्याग शांति ग्रंथरम फल त्याग और आसक्ति त्याग वह सबसे श्रेष्ठ है। वहां भी उसको श्रेष्ठ बताया है। तो श्रेष्ठ कौन है कि योगी, योगी नाम क्या, केवल परमात्मा की तरफ ही इनका विचार है, संसार की तरफ उद्देश्य नहीं है, ऐसा है योगी। तो वो योगी तू हो जा ऐसी आज्ञा दी भगवान ने, ऐसी आज्ञा दे करके 46वें श्लोक में और कहा, फिर कहा योगी नाम की सर्वेशां। अब योगियों को लिया, तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्मी से, योगी बताया श्रेष्ठ। अब योगी नाम की सर्वेशां, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, जितने योगी हो जाए सर्वेशां भी योगी नाम, संपूर्ण योगियों से योगी नाम सर्वेशां मदगते अंतरात्मा। अंतरात्मा मदगत है, भीतर से भगवान को चाहता है, भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान अपने लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं, उसका नाम अच्छा लगता है। ऐसे जो भगवान में अंतरात्मा है, अंतरात्मा और श्रद्धा विश्वास भी भगवान पर, भरोसा भगवान का है, ऐसा जिसके भाव है तो योगियों में भी वो श्रेष्ठ। योगी नाम सर्वेशम मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत। वो युक्त तम है, ये युक्त युगतर और युक्त तम सबसे योगियों से वो श्रेष्ठ योगी भगवान था, ये भगवान ने बात कही। इसके बाद में 7वां अध्याय आता, ये 7वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो भगवान जैसे एक बात याद आ गई कि जैसे भक्त को भगवान की बात प्यारी लगती है, जो भक्त होता है भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का प्रभाव, भगवान का स्थान, अरे भगवत संबंधी बात मीठी लगती है। जैसे भक्त को भगवान की बात अच्छी लगती है ऐसे भगवान को भक्त की बात अच्छी लगती है, ये तमाम प्रपंच। तो भगवान ने ये बात कही तो भगवान की प्रेम उभर आया, सातवां अध्याय अपने तरफ शुरू कर दिया। तीन श्लोक एक श्लोक अर्जुन का नहीं है, सब भगवान के भगवान सातवां अध्याय में। बस मैं यह आशक्त मना पास है योगी निरंजन मदास है असंसिम समग्र, और समग्र मेरे को वो ज्ञान लेगा, मेरा समग्र रूप है उसको ज्ञान हो जाएगा। ऐसे सातवां अध्याय भगवान ने शुरू कर दिया अपनी तरफ से, और सातवें अध्याय के अंत में ये समग्रम कहा ना पहले श्लोक में, यही सातवें अध्याय में अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ब्रह्म अध्यात्म कर्म ऐसी बातें बताई वहां। उसके पूछने पर अठारहवें अध्याय में ये प्रश्न कर लिया अर्जुन ने कि सात बातें क्या है, वो अध्याय कह दिया। वो कह करके फिर नौवां अध्याय फिर शुरू कर दिया भगवान, भगवान के मन में कहने की बहुत रहेगी, भगवान के मन में कहने की बहुत रहेगी। योग प्रश्न की बात पूछी एक तो घर से घबराहट थी, एक पीछे आ गई योगी की बात भक्ति योगी की मत गति अंतरात्मा, तो अर्जुन घबराया हुआ था इस वास्ते कहने की मन में आई, और सबसे श्रेष्ठ योगी है योगी की याद आ गई बात, जैसे भक्त को भगवान की बात याद आ जाए फिर मस्त हो जाता है, ऐसे भगवान को भक्ति भी याद आई भगवान मस्त हो गए। तो सातवां अध्याय कह दिया, आठवां अर्जुन के पूछने से कह दिया, फिर नौवां अध्याय शुरू कर दिया, दसवां अध्याय शुरू कर दिया, बहुत आगे मन में भगवान की कहने थी बिना अर्जुन के पूछे कह दिया। तो कैसे ये क्या पता ये नौवां अध्याय भगवान ने किस लिए कहा, आठवें अध्याय की बात कर दिया तो आठवें अध्याय में कोई विषय होगा उस संबंध से कहा, तो नहीं सातवें अध्याय के साथ संबंध है इसका। सातवें अध्याय में इदं दूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि रसोऽयं ज्ञानं विज्ञानस्थितं, ये बात विज्ञान से ज्ञान कहूंगा। तो आठवें अध्याय में अर्जुन ने पूछ लिया प्रश्न उत्तर दिया, तो नौवां अध्याय में ज्ञानं तेन सभ्य इदं इदं वक्ष्यामि विज्ञान से ज्ञान कहूंगा नौवां अध्याय फिर का प्रश्न छूट गया ना सातवें अध्याय का, तो सातवां अध्याय में विज्ञान से ज्ञान का वही विज्ञान से ज्ञान में नौवां अध्याय भी कहूंगा मैं, तो कहने की मन में रहेगी भगवान की, इस वास्ते भगवान अपने मन से कह रहे हैं। तो भगवान को भगत बहुत प्यारा लगता है, भगत बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मेरे प्रसंग चला था कि भाई भगवान भक्त को भक्ति बड़ी सुगम है श्रेष्ठ है, अभी मैंने आर्म में क्या गया मोक्ष साधन सामग्रियां भक्ति रेव गरीयसी, अत्यंत श्रेष्ठ है भक्ति। तो भक्ति की बात भगवान को प्यारी बहुत लगती है, और भक्ति को भगवान ने सबसे ऊंचा बताया है और सरल बताया, हे नाथ मैं आपका हूँ, इतने से भक्ति शुरू हो जाती है। किसी सीधी बात है, अब इसमें दूसरा का जो आश्रय है, दूसरा का भरोसा है, दूसरे में आसक्ति है, दूसरी कोई कामना है, ये बात है भक्ति में अनन्य हो जाए केवल भगवान की शब्द काम बन जाए ठीक। इस बात भगवान कहते मान चो अभ्यविचारी ने भक्ति योगी सेवा से अभ्यविचारी भक्ति हो। रामायण में राजगति होगी राम जी की तो भगवान शंकर ने स्तुति की है, सभी हम तुम्हें कह सकते महाराज भी लोकी है जी न जन्म इस गरीब की तरफ देश डाला राजा धीराज महाराज जिसे देख लिया ये गरीबी से खड़ा है महिपाल भी लोक जी न जन्म शंकर हाँ महाराज खड़े हो तो कहा महाराज बार 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 मांगो मैं बार बार मांगूंगा, और बार बार मांगने से देने वाला गुस्से में हो जाता है उकसा जाता है, क्या करता है पीछे पड़ गया हमारे, तो मैं तो बार बार मांग पीछे पड़ूंगा, परंतु हरि से आप खुश रहना गुस्सा मत करना नहीं, बार बार बर मांगू हर्षित उसी रंग। अरे भोले बाबा क्या चाहते हो तुम? बार बार मांगो कि पद सरोज अन पाए नहीं भक्ति, अपाय नहीं युग्न रहित अबाध भक्ति, मन मुझे कोई और इच्छा न हो, कोई ज्ञान की मुक्ति की उसे सिद्धि की कोई कामना है, ये कोई दूसरी कामना है, यह है विघ्न भक्ति। मन में जो कामना बनी हुई है तो आपकी अबाध भक्ति निर्विघ्न भक्ति और सदा सत्संग, ये दो चीज। सत्संग तो सदा होनी चाहिए, कभी मिल जाए कभी नहीं, ऐसा नहीं, सत्संग हो जाना मिलती रहे। और विघ्न रही तो बाधा रही तो कामना रही तो भक्ति, ये भगवान शंकर ने मांगा है। अब शंकर के कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, योग प्राप्त करना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, क्या बाकी रहेगा शंकर की, सब कुछ प्राप्त है। तो भी शंकर कहते अन पाए भक्ति और हमारा सदा सत्संग, सत्संग मिलता रहे हमारा, यह भगवान शंकर मांगते हैं। तो भक्ति भगवान शंकर मांगते हैं, जिसके नाम लेने में भी कल्याण हो गया। शंकर संग कल्याण करो थी शंकर जो कल्याण कर रहे, वे शंकर भगवान भी भक्ति मांगते हैं। तो भक्ति की बड़ी महिमा, महिपाल बिलो करता से कहते देखिए महाराज, मैं अभी एक बार खड़ा हूँ सामने गरीब दीन जाना, भक्ति की बड़ी महिमा। और भक्ति बड़ी सुगम, कहते सुगम कैसे है भाई, भक्ति के लिए बताया है राम जी ने रामायण में, गोस्वामी महाराज कहते हैं भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति अनुपम उपमा नहीं है इसकी, अमुक स्वामी भक्ति है और सुख मूला है, तो मेरे ही से संत हो ये अनुकूला, संतों की कृपा मिलती है भक्ति, सत्संग से मिलती है, भगवान के प्यारे भक्त अनुकूल होते हैं तो भक्ति मिलती है। अगर भगवान के भक्ति प्रतिकूल होते ही नहीं, भगवान के भक्त होते वो तो सबके ऊपर अनुकूल ही होते हैं सदा ही। तो संत महात्मा मिल जाए तो भक्ति सुगमता से मिल जाती है, इस वास्ते संतों की सत्संग की महिमा बहुत बताई। सत्संग जिसको मिलेगी उसको भगवान मिल जाते हैं, भक्ति मिल जाती है, सब चीज मिल जाती है। तो भक्ति में सुगमता क्या है भाई, कैसे कठिनता यह है कि भोगों की इच्छा कामना वासना मान की बढ़ाई की शरीर के निरोग होने की छोरा छोरी की इनके धन धन की ये जो साथ कामना रहती है ना, ये बाधा है। इनसे रहित हो भक्ति सब अनन्य भक्ति होती है, नहीं तो अन्य साथ में रहता है। तो फिर भक्ति सुगम कैसे हुई, सुगम होने का कारण बताऊं, जैसे आप अपने आपस में संबंध जोड़ लेते, जैसे आप जोड़ गए मेरी माँ है तो माँ है वो अपनी माँ अच्छी लगती, माँ को बेटा अच्छा लगता है मेरा बेटा है, तो ऐसे भगवान को संबंध जोड़ लो भगवान से, भगवान को माँ बना लो, बेटा बना लो, बाप बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, कोई संबंध जोड़ लो भगवान के साथ में। जो संबंध का आपको अभ्यास है ही, संसार में रहते हैं उनके साथ संबंध है ही संसार का, इस तरह का संबंध भगवान के साथ कर लो, भगवान मेरे ये लगते हैं, वो संबंध जोड़ने से भक्ति सुगम हो जाती सरल हो जाती है। भगवत मेरे हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे मित्र हैं, सुदामा क्या समझते थे, मित्र समझते थे, हम साथ पढ़े हुए हैं हमारे मित्र हैं, श्री कृष्ण वो तो मित्र हैं, मित्र समझते थे, ग्वाल बाल क्या समझ मित्र समझते थे, तो कोई मित्र समझता है, कोई पुत्र समझता है, कोई पिता समझता है, कोई गुरु समझता है, और कोई कोई भगवान को चेला समझते हैं। एक बाबा हमें मिले थे, वो विश्वामित्र मानते अपना, मैं तो विश्वामित्र हूँ, राम जी हमारे चेला है, हमारे शिष्य है। अयोध्या में एक संत हुए हैं, वो भगवान को चेला मानते थे। क्या नाम? अयोध्या वाले संत बड़े पंडित, नामी पंडित थे, वो भगवान को चेला मानते थे अपने शिष्य। वहाँ ठाकुर जी का अपने घरे मंदिर बनाया, उन ठाकुर जी का नाम रखा कुरुसदन बिहारी रामलला उमापति, उमापति महाराज नाम था। बड़े नामी पंडित थे, बड़े दिग्विजय पंडित, नामी पंडित। एक बात हमने सुनी कि वो जनकपुरी गए, तो जनकपुरी उस समय में विद्वानों की एक जगह थी, कई विद्वान रहते थे। तो वहाँ ऐसा था कि एक बड़ी नौबत थी कि नगाड़ा बहुत बड़ा, उस पर डंका मारे तो एक मारे तो एक शास्त्र में शास्त्रार्थ करूंगा, दो तीन पांच छह मारे छह शास्त्रों में मैं पंडित कोई करो। तो वो डंडा सुन करके विद्वान हंसे, फिर शास्त्रार्थ करते। उमापति महाराज गए, 50 डंडा मारा कि कोई पागल आदमी क्या करता है। लोग गए कि महाराज आप 50 डंडा मारे क्या है, कहते 18 पुराण, 18 उपपुराण और 4 वेद सशास्त्र। किसी को मिलो 18 पुराण, 18 उपपुराण, 36 हो गए, 4 वेद कितने हुए, 40 हो गए, और 45 हो गए, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, पूरे 50 हो गए ना। 4 उपवेद, 4 उपवेद, तो 4 वेद, 4 उपवेद और 18 पुराण, 18 उपपुराण और 6 शास्त्र। इसमें कहीं से कोई पूछ लो, कोई आ जाओ भाषा, ऐसे विद्वान थे वहां पति। तो कहा मिथिला शिथिला जाता समा जाते उपापतो, वहां पति आज मिथिला शिथिला हो गई, कई इतने नामी विद्वान थे। वो रामलला को चेला मानते थे। भगवान जब वनवास में गए तो वहां प्रयागराज में ठहरे, तो वहां जाने लगे तो भगवान को भी रास्ता किस मार्ग में जाए पूछा। वहां परमात्म पथ परम सुजाना थे ना, तो उनसे पूछा मार्ग किस मार्ग में जाओ, वो वाल्मीकि से पूछा। तो यहाँ पूछा तो जब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि चलो भाई जाने वाला, तो कि वो सब जिसने सुन दे 50 ब्रह्मचारी आए, तो 50 क्यों आए, ये 50 थे, एक एक पुराण के, एक एक उपपुराण के ऐसे विद्यार्थी थे उनके, एक एक चीज में तो 50 विद्यार्थी आए। उसमें उन्होंने 4 विद्यार्थी, 4 वेदों को जानने वाले 4 विद्यार्थियों को साथ दिया। तो ऐसे वो उमापति थे, वो उमापति महाराज रामलला को मानते थे अपना चेला। तो बाजार में जाते बढ़िया फूलों का हार घूस भर के उल्लास पहन लिया, रामला लो बेटा ये गुरु प्रसादी लो, क्यों को ठाकुर जी पहनाते। तो किसने कह दिया महाराज गुरु प्रसादी देने की थोड़ी होती है, गुरु प्रसादी लेने की होती है, वो तो चेला रहता है, ये थोड़ा ही है मैं गुरु तू चेले प्रसादी। कहते नहीं लेता हूँ, नहीं जाएंगे। गुरु प्रसाद जी लेता है राम राय ईश्वर देता हूँ। तो कह देंगे देखो बेटा, अब देखो गुरु प्रसाद जी लेना हो तो ले लो, ठाकुर जी ने सुना दिया। ऐसे थे ठाकुर जी गुरु सदन बिहारी रामलला, गुरु सदन बिहारी थे, राम जी वो चेला मानते थे। एक बार सुनते हैं कि संतों की एक सभा, संतों की एक मंडली आई, ये बैरागी बाबा है ना, पहले बड़ी मंडली भरती थी इनकी, हाथी साथ में घोड़ा साथ में, बड़ी बड़ी मंडलियां भरती थी। जहां जाओ ओ गुरु भाई आज ठाकुर जी का भोग लगेगा तुम करो, किसी सेठ को किसी संत को कह आगे देते थे, वो सब प्रबंध करना पड़ता था। उमापति महाराज के यहाँ पर आए बैरागी मंडली, बैरागियों का मंडली आए, तो उमापति महाराज वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। तो महाराज क्या ठाकुर जी क्या भोग लगेगा, ठाकुर जी कटहर का भोग लगेगा, कटहर लाओ। और कटहर रुचि नहीं थी, कटहर फसाई तो लाठी लगेगा। राम लगा भाई संत आ गए, अतीत आ गए है, प्रबंध करो। कटहर मांगते हैं संत, तो कटहर का प्रबंध करो। आ गए क्या करके आ गए कि महाराज कह दी आंख हो गए, प्रभुसुख हो जाएगा, हो गए कह दी हो जाएगा। मकान खोलते तो कटहर ही कटहर भरे मकान, लो महाराज ये कटहर लो पाओ जाओ। ऐसे थे उमापति महाराज। तो भगवान को चाहे जो संबंध में मान लेना सुगम पड़ता है। कहते कहीं गुरु भाई मान ले, किसी को अपना धर्म भाई मान ले, किसी को कुछ मान ले, कुछ मान लेते हैं, तो ऐसे भगवान को मानना सुगम पड़ता है, क्योंकि संबंध मानने की आदत है ही, हो जाते हैं गोद चले जाते हैं महाराज, उनका बेटा हो जाते हैं। वो असली माँ बाप को नहीं कमा कर उनको देता है, वहाँ कई गोद होते है वही वहां चलता है। साधु क्या होते हैं, साधु भी चाहिए, हम तो साधु हो गए साहब। अरे बाप तेरे माँ बाबा माँ तो ही नहीं है कोई, अब साधुओं का जन्म तो थोड़ी है, हमारे तो पाला पाला है, मुफ्त में आता है, मुफ्त में रोटी, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में बेटा, चेला भी मुफ्त में आता है, कोई काम कुछ करना ही पड़ता नहीं, पाला पोसा तैयार आ जाएगा, हमारा चेला है सर, क्या जोर है बताओ, जन्म है छोटा रहे पाले पोसे मेहनत करे, बड़ा पाला पोसा जाओ हमारा चेला, तो गुरु महाराज खुश हो जाते हैं। ऐसी बात है, तो गुरु को मान लेता है पिता, कोई माता है पिता है संबंध है गुरु का ही मान लिया। अंक बेच गए हैं सब, हमने देखा है तो मन में कई बातें आई इस बात को लेकर, गुरु के हम शिष्य हो गए, और गुरु जी को ज्यादा जानते नहीं, ना पढ़े लिखे ज्यादा है, ना कोई पंडित है, ना किसी बात है, साधारण है। अब दूसरी जगह पढ़े, दूसरी जगह गुण लिया, सब कुछ लिया, पर गुरु हमारे वही है, उनसे कोई विशेष फायदा नहीं लिया, परंतु हृदय में जची हुई कि हमारे गुरु तो वही है, चाहे कितना और जगह मिल जाए परंतु गुरु वही, तो कुछ हो गई देखो कितनी विशेष बात है। तो ये संबंध जोड़ना मनुष्यों को आता है, ये लड़कियां है अपने माँ बाप का संबंध रखती है, और ब्याह होने पर सासरे का संबंध हो जाता है, सासरे का संबंध हो जाता है तो पहले विवाह के बाद भेजते हैं तो रोती नहीं है लड़की, माँ का मुंह हो जाता है, परंतु सासरे जाकर इतनी वहां हो जाती है, फिर मरा थोड़ा दिन आना जाना रहता है, फिर सासरी रहने लगती है, फिर वहाँ बेटा हो जाए, फिर पोता हो जाए, फिर परपोता हो जाए। मैंने कहा था घर खोयो पराई जाई, पोते की एक स्त्री आएगी पूजा उद्दंड हो गई, तो घर खोलो पराई जाई, वो दादी माँ कहती है समझे, घर खोलो पराई जाई, तो उनको माँ जी को ये याद नहीं कि मैं भी पढ़ाई जाई हूँ, मैं तो यहाँ की हूँ ही, मेरे बेटा है, पोता है, परिवार है, मैं तो माँ हूँ, दादी हूँ सबकी, ये याद नहीं है। तो दादी जी आप यही जन्मे थे क्या? याद नहीं। इतनी वो संबंध मांगने से इतनी दृढ़ता हो जाती है, तो संबंध मांगना संसार को आता है। इस बात से भगवान के साथ संबंध मान लो अपना। अरे माँ मान एक सज्जन मिले थे हमें, वो कहते थे कि मैं तो ठाकुर जी को माँ कहता हूँ, मेरे को माँ ना हो मीठा बहुत लगता है, प्यारा लगता है, तो मैं ठाकुर जी को माँ कह दू, वो निश्चिंत कह दू, माँ ही है भगवान। भगवान के तो ऐसा एक एक लेख मैंने पढ़ा, तो बड़ी सुंदर बात लगी। वो कहते हैं हमारा कन्हैया भोला बहुत है, बहुत भोला है। को कहे तुम मेरी माँ हो? हाँ मैं माँ हूँ। कि महाराज आप तो गुरु जी हो? मैं तो गुरु जी हूँ ही, तुम सेरा गुरु हो गए। ये यथा माम प्रबंधन थे सही भजन कितनी शुभ बात है। कहते महाराज मैं तो आपको चेला मानता हूँ, मैं तो चेला हूँ ही गुरु। आप ये था माम प्रबंधन से थी जो इतना कन्हैया बोला है, चाहे मान लो चाहे मान लो, हाँ 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 ठीक है स्वीकार कर लेते हैं, जैसा वो मान लो वैसे मान लो। उनसे भीतर से जैसे ये कन्या वो करके विवाह होने पर उस गोत की अपने को मान लेती है, मान लेती तो मान ही लेती है, फिर अपने माँ बाप भाई संबंधी कुटुंब क्या गोत को याद नहीं करती, गोत भी बदल जाता है, गोत भी। पिता के यहाँ कोई संतान पैदा होता है तो ब्याह भी कन्या को नहीं लगता, और कन्या ब्याह भी कन्या उस ससुराल में कोई लड़का पैदा हो जाए तो कहते भाई तू रसोई में और हाथ मत लगाना, ससुराल में पैदा हुआ है और उस गोद का लग जाए सूत्र लग जाए इसको, और यहाँ गोद कुछ लगते ही नहीं, बेटी है पैदा हुई है सब कुछ, तो इतनी बदल जाती है। तो ये बदलना अपने को आता है ना, तो सुगम क्यों है भक्ति कि बदलना आता है, वो बदल भगवान के साथ। ये एक बुल्ले शाह हुए संत, पंजाब में बुल्ले शाह संत हुए, ग्रस्त थे। तो एक दिन कोई गया तो वो खेत में पानी दे रहे थे, नारा चल रहा था खेत में, क्या रंग दे रहे थे। उसने कहा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? रब का की पाना, इधर पट नारी जलाना, रब का की पाना, एक उधर रोक दिया एक खोल दिया, इसे कारी भर जाती है, इधर से पट दिया संसार की कब से हटा दिया, भगवान ने खोल दिया, इधर पट नारी जलाना रब का की पाना, इनको जोर है क्या? सीधी सारी बात है, भगवान ही से हो जाए, संसार तक रोक दो और भगवान तक खोल दो, जाएगा। तो ये सीधी बात है, एक भगवान का संबंध हमारे तो बस। मीरा भाई ने कह दिया बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो भी कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो को। सीधी सीधी बात है, अपना संबंध जोड़ लिया, भगवान ये रहे हैं मैं भगवान की हूँ। कोई जो ये भाव जिसका हो गया वो मीरा भाई है, मीरा भाई भाव है, मीरा भाई का जो भाव है वो कोई साहब कर दो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल। तो भगवान की भक्ति सुगम क्यों है कि संबंध जोड़ने मात्र से काम हो जाए, ऐसा संबंध जोड़ना आता है, संसार का तोड़ना संसार का जो संबंध जोड़ना। इस वास्ते साधन सामग्री में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, गरीयसी का और सुगम भी है, तो संबंध जोड़ना आता ही है। ये साधु बैठे इन्हें पूछो, कुटुंब का कागज नहीं आवे 12 वर्ष तो याद नहीं आती कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, भाई भौजाई कैसे हैं, भतीजे कैसे हैं, कुटुंब में सुख है कि दुख है, नाम को गुरु महाराज है, बस गुरु महाराज।
हर गुरु भाई काका गुरु बाबा गुरु दादा गुरु चेला सब कुटुंब तो ये अटकल सबको याद है, अनुभव की बात है, ये भगवान के साथ कर लेना। और भगवान सब संबंध मानने को तैयार, आप जो संबंध करो भगवान से कि महाराज मैं तो तुम मित्र हो, कहा तुम्हारे मित्र हूँ मैं, साथ में खेले खूब मौज से मित्र यार। ऐसे कई भक्त हुए, तरह तरह की उनकी भावना हुई है, तो भगवान के साथ में एक सा हो जाए, एक मान रहे, ऐसे में मस्त हो जाए। एक वृद्ध ब्राह्मण से एक धनी आदमी के यहाँ पर रहते थे, एकाएक से बूढ़े हो गए बाबा, भगवान कन्हैया को अपना बेटा मानते थे, कन्हैया मेरा पुत्र है, ऐसे तो ठाकुर जी की सेवा वही करते वहां धनी आदमी के, वो ठाकुर राम लगा कृष्ण लगा हो वेणु गोपाल की सेवा करते थे। तो एक दिन उस धनी की लड़की एक छोटी बच्ची वो आ गई, करते सेवा पूजा करेंगे, तो उसने पूछ लिया बाबा ये कौन है, कि बेटा ये तेरे भाई है, जिसकी मेरे भाई है छोटी बच्ची, क्योंकि बालक नहीं था उसमें, तो बालक होते बाबा जी गोदी में खेलती रहती वही, कहते ये तेरे भाई है, उनके चचके जी मेरा भाई है, बस ठाकुर जी को देखती राजी होती खेलती तेरे भाई है। एक दिन ठाकुर जी भोग लगाती है, बाबा भोग लगाते तो वो अर्गी सा आज तो मैं जिमाऊंगी, मेरे भैया को मैं जिमाऊंगी, कितना बेटी से देखो हाथ धोया हुआ नहीं है, स्नान किया हुआ नहीं है, तू क्या जिमाएगी, मैं भोग लगाऊ कुछ नहीं सा मैं लगाऊ भोग जिमाऊंगी, मैं जिमाऊंगी अर्गी भोग। कई चार दिन जिंदगी हुई मन है जाने दो, हाथ धुला दिया शरीर भीतर ऊपर पर्दा कर दिया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, अब बैठ 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 मौज हो गई, अब बच्चों के साथ खेला, बच्चों का स्वभाव है उसे खेलाएगी करते आप उसमें ऐसे खेले हो जाएगा, भाई बहन भाई गुरु जी मैं अपन को फिर भोग उतरे मारे बाहर, इस तरह से वो खेलते थे। तो एक दिन उसने पूछा भगवान से, फिर उसकी वो संबंध हुआ, बड़ी हो गई सियानी हो गई, सियानी हो गई तो घर वालों ने कहा इसका ब्याह कर दो, सगाई हो गई, अब ब्याह हो जाएगा तो महाराज बड़ी व्याकुल हो गई, एक अंत में जाकर भैया मंदिर में जा बंद भीतर जाएगा भैया मेरे माता पिता के ब्याह कर दे, तू वहां से वहां चल जाऊंगी भैया, तुम तो यही रह जाओगे, मैं तो मैं कैसे जाऊँ, मैं जानी चाहती भैया के साथ ही रहूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा भाई तुम ब्याह करा, तुम चले जा, मैं वहां आ जाऊंगा, मैं तू कर वहीं आ जाऊंगा, तुम घबरा मत, ठीक है मगर। अब ब्याह हुआ तो ब्याह में इतनी बढ़िया तैयारियां हुई, इतना खर्च लगा धूमधाम से, बड़ा भाई से ब्याह करे बहन का ब्याह कर दिया, बहन का ब्याह कर दिया, जब साथ में गए ससुराल, भाई गया पहुंचाने के लिए बहन को, वहां गया फिर थोड़ा देर रह करके बहन को पीछे ले आए, फिर पहुंचा दी वहां, अब वहां रह गई तो भाई को याद करे भाई आ जाए, वह बड़ी हो गई, अब लोग कहते हैं ठाकुर जी है, घर वाले भी सेवा करे, गांव के लोग भी ठाकुर जी करे, भगवान करे। उसकी मन में आया तो एक दिन बैठे थे कुंवर बंद करके, और बैठे तो कृष्ण को बुलाया भाई आओ, भाई आ गया सच, देखो भैया तुम्हारे कोई भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं, परंतु मेरे तो भाई हो, तो मेरे तो भाई भाई मैं तेरा भाई हूँ, मेरे तो भाई हो, मैं भाई मानूंगी, हाँ तू भाई बनना, देखो भैया तुमने मेरा कितना प्यार किया, जिस दिन मैं क्या भोग लगाऊ मैं तो बाबा माने नहीं, माँ बाबा ने माने ही मेरी बात। तब तुमने जाकर कान में वो देखती, छोटी छोरी वो देखती है कि बाबा के कान में ठाकुर जी कह रहे हैं कि इनको भोग लगाने दो, तो वो भाई मेरे को भोग लगाने दो, तुमने कान में कह दिया, मैं देखती थी वो कह दिया तब भोग लगा दिया मेरे को, तो मेरे तो भैया हो। हाँ मैं भैया हूँ। तो भैया मेरे को यहाँ क्यों भेजा? क्या ये भी मेरा भक्त है, पहले का संबंध है तेरा और मेरा भक्त है ये, तू यही रहे देखा है। फिर उसको मेरा ज्ञान दिया कि महाराज तुम्हारे को बस भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। हाँ भाई, तो कुछ ही बोल मेरे भाई हो, हर भाई ऐसे पक्का कर दिया कि मेरे तो भाई हो। हाँ भाई, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा भाई हूँ, भगवान वासो कुछ हो, तेरा तो भाई हूँ मैं। ऐसे भगवान के साथ घनिष्ठ प्रेम हो जाए तो भक्ति सुगुण क्यों है, ऐसा संबंध जोड़ो, बस भक्ति सुगुण भक्ति हो जाएगी। ऐसी एक विलक्षण बात है भगवान, तो साफ बहुत मोक्ष साधन की जितनी सामग्री है उसमें भक्ति सरल है और सुंदर है, और भक्तों के बस में होते आए भगवान, भक्त के बस में, भक्त के बस में हो जाते हैं भगवान। कितने कितने भगवान के काम किए भगवान ने, बड़े विचित्र, भक्त के बस में होते आए भगवान। तो ये सुगम साधन है, सरलता का साधन है, मन को बदल दो। जैसे बदलना आता ही है इनको, वो पीर की होती है, फिर ससुराल की हो जाती है, गोत्र बदल देती है, ये बदल दिया थोड़ा सा इधर और बदल दो, ऐसा इनको भी आता है, साधुओं को भी आता है, गोत जाने वाले भाइयों को भी आता है, तो थोड़ा सा और करो, और करो। भगवान का मैं हूँ, अब मेरा विषय में नहीं, मैं भगवान का हूँ, अरे भगवान सब काम कर देंगे। मानने मात्र से सास एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, और नहीं अनन्य भाव से, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा में कोई और नहीं है। और वो भगवान इसमें सहारा देते, आप हृदय से पक्के हृदय से मान लो और मान कर भजन में लग जाओ, फिर संबंध को दृढ़ भी भगवान कर देंगे। ये कहावत आई है कि लाद दे और लदवा दे और लादन वाला साथ दे, काम कर देते, प्रेम बिता देंगे, संबंध भी दृढ़ कर देंगे, भगवान की पर सब हो जाएगा। तो मस्त भगवान को अपना करो, बोलो मेरे भगवान है, मेरे तो गोपाल दूसरे वाला कोई, बस ऐसे अपना पर भगवान के साथ करो।